نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما صدق الله العظيم. سورہ طٰہٰ چل رہا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 114 تک تلاوت کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک نے تفصیل سے بیان فرمایا اور بہت سے مسائل اور واقعات اور عبرت کی باتیں یہ اس ضمن میں اللہ پاک نے بیان فرمائی. جہاں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل معلوم ہوئی وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دعویٰ یہ بھی ثابت ہوا اور اس کی دلیل گویا فراہم ہوئی. وہ کیسے معلوم ہوا؟ اس کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم آپ پر پچھلے واقعات کو. جو پچھلے واقعات ہیں جیسے حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کیا، یہ بھی اور اس طرح اور دوسرے واقعات بھی ہم آپ پر بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ چیز نبی کے ساتھ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر وحی بھیجے اور پھر وہ اس کو لوگوں کو پڑھ کر سنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ کسی سے پڑھے بھی نہیں تھے اور کسی سے استفادہ بھی نہیں کرتے تھے، پھر بھی آپ نے یہ واقعات ٹھیک ٹھیک اتنی تفصیل سے اور مستند طریقے پر بیان فرمایا، یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ پر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا. اور جس پر کلام نازل ہوتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر ہیں. تو اس واقعے سے اللہ پاک نے یہ بات بتائی کہ آپ کی یہ نبوت کی دلیل بھی ہے اور واقعات کے جو مقاصد ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے حضور کی بڑی تسلی ہوتی تھی، کیونکہ لوگ جو آپ کی مخالفت کرتے تھے تو آپ بہت تکلیف میں آ جاتے تھے اور اپنے دل پہ لے لیتے تھے، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی ہوتی تھی. کیونکہ نبی کے ساتھ جو کچھ گزرتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نبی کی بات 100% لوگ مان لیتے ہوں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. تو جو لوگ نہیں مانتے اس کے بارے میں نبی کا دل بہت مجروح ہوتا ہے، مغموم ہوتا ہے، और नबी को ये उलझन होती है कि कहीं मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं हो गई, मैंने कुछ पैगाम में वो तो नहीं किया, ऊंच नीच तो नहीं की। तो ये अल्लाह की बात है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाली बात है, तो उस वजह से वो परेशान होते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात असल ये है कि लोग हैं ही दो किस्मत वाले, कुछ लोग अच्छी किस्मत के होते हैं, कुछ ख़राब किस्मत के। तो जो ख़राब किस्मत के लोग हैं, ये शकी या जली जिनको कहते हैं, उनको तो कितना भी समझाए और कोई भी समझाए, ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझाएं और अल्लाह पाक अपना कलाम नाजिल करके समझाए, फिर भी नहीं मानते। इज़ा कानत तिबा व तिबा सुइन फला अदब युफीदु वला अदीबु। जब तबीयत ही खराब होती है तो ना अदब फायदा देता ना अदीब फायदा देता, किसी कितने ही मुअस्सिर अंदाज में समझाया जाए उसने। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। नादान आदमी है तो कितना ही कलाम नर्म नाजुक हो बेअसर ही होता है। वक़द आतैना का मिल्ल दुन्ना बिकरा, और तहकीक हमने आपके पास हमारी तरफ से नसीहत भेज दी है। अल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान पाक जो है वो नसीहत है, जिक्र है, याद दिलाने वाली चीज़ है, जहन को मुतवज्जे करने वाली है। जो आदमी संजीदगी से सोचेगा तो जितना इसमें गौर व फिक्र करेगा, इनके मजामीन में, इससे हासिल होने वाले उलूम में, इससे बात मालूम होने वाली बातों में, उतना वो ये महसूस करेगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने बराए शफ़क़त और मेहरबानी के इंसानों को समझाया है एक बात। ये खालिस नसीहत है, खैरख्वाही है, भलाई है। अल्लाह तबारक व ताला किसी के मोहताज नहीं है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं। सारी मखलूक अगर नाफरमानी पर आ जाए तो अल्लाह तबारक व ताला को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब बिगड़ जाएँ, सब जहन्नम में जाएँ, तो उनका क्या नुकसान है इसमें। तो ये जो कुछ हमने आपकी तरफ उतारा है, ये सिर्फ लोगों के लिए जिक्र और नसीहत है, याद दिलाने वाली चीज़ है और भलाई पहुँचाने वाली है। मन आरज़ अनहु, जो इससे एराज करेगा, जो नहीं मानेगा, कुरान पाक के अल्लाह का कलाम होने को नहीं मानेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह का पैगंबर और रसूल होने को नहीं मानेगा, और हुजूर पर ईमान नहीं लाएगा, इस कलाम के अल्लाह पाक की तरफ से होने पर ईमान नहीं लाएगा, तो जाहिर है कि वो इस ज़िंदगी को इख्तियार भी नहीं करेगा। और जब वो इसको इख्तियार नहीं करेगा तो चलेगा भी नहीं इसके मुआफ़िक, और जब चलेगा नहीं तो कल क़यामत में उसका नतीजा सही नहीं आएगा। उसको फरमा रहे हैं कि जो एराज करेगा इससे, फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा, तो वो क़ियामत के दिन बोझ उठाएगा, अपने ऊपर अपने अमाल का बोझ उस पर उठाया हुआ होगा, गुनाह करेगा और गुनाहों का बोझ उसके सर पे लदा हुआ होगा। अगर शिर्क किया है एक आदमी ने, कुफ्र किया है यानी माना ही नहीं, तब तो ये है कि उसका शिर्क और कुफ्र उस पर इतना बोझ हो जाएगा कि वो उसको उठा भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो उसको बहरहाल जहन्नम में पहुंचा देगा। और उलमा ने फरमाया कि इसके मतलब में ये बात भी शामिल है कि जो आदमी ईमान लाने के बावजूद एराज करेगा इसके अहकाम से, तो फिर वो आदमी जो बदअमलियाँ उसने की हैं उसका बोझ अपने सर पर उठाएगा। हदीस शरीफ में आता है कि क़ियामत में एक आदमी के सामने इंतहाई करीहुल मंजर, बदबूदार, बदसूरत, जिसको देखते ही जो है तबीयत आदमी की घिना घिन पर आ जाए, वो उसके सामने आएगा और कहेगा कि तू मुझे जानता है। तो उसने कहा कि मैं तो तुझे नहीं जानता, मगर तेरी सूरत ऐसी है कि जिससे तबीयत ख़राब होती है और इंतहाई बदबू तेरे पास से आ रही है, और तू अच्छा आदमी नहीं लगता कुछ। तो वो कहेगा कि मैं तेरा अमल हूँ, तू दुनिया में मुझ पर सवार था, मैं आखिरत में तुझ पर सवार हूँ, और उसके सर पे चढ़ जाएगा। अब जिस नौयत का वो अमल होगा बदअमल, उस नौयत के एतबार से वो सर पर मुसल्लत होगा। हुजूर ने फरमाया कि कभी ऐसा होगा कि एक आदमी ने ऊँटों की ज़कात नहीं दी, तो ऊँट खुद आ जाएगा और कहेगा कि मैं ऊँट हूँ तेरे, ऊँट की शक्ल में उसका ज़कात न देना आ जाएगा। ज़कात न देना एक अमल है जो वहाँ थिंक की शक्ल में चेंज हो जाएगा बदामली, और वो ऊँट का शेप लेके उसकी गर्दन पर सवार हो जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि ऊँट खड़ा हुआ तो जमीन पे होगा और खाली उसके ऊपर कुछ अपनी गर्दन उर्दन रखेगा नहीं, ऊँट पूरा उसके ऊपर ही बैठ जाएगा। अब एक ऊँट की ज़कात नहीं दी होगी तो एक ऊँट बैठेगा, अगर 50 की नहीं दी है तो 50 बैठ जाएंगे ऊपर आके। अब अंदाज़ा लगाइए क्या गुजरेगी। अच्छा टाइम पास करना है 50,000 साल, वक्त वक्त गुजारना है 50,000 साल का टाइम असर पे है बस। वो खुद ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी की ज़मीन खा ली तो वो ज़मीन तवक बन के उसके गर्दन पे लटक जाएगी। अब ये कि वो आदमी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा तो, मगर ये कि उसका जिस्म उसके हिसाब से फिर डिज़ाइन किया जाएगा और उसको तकलीफ होगी उसकी, कोई मामूली बात तो नहीं है कि ज़मीन आदमी के गले में पड़ जाए आगे, उसको जो भी शक्ल अल्लाह पाक देंगे। तो जो जो जिस जिस टाइप और लाइन की बदअमलियां करेगा वो उसके ऊपर बोझ बनकर आ जाएंगे। और ये नौबत कब आएगी, जब कुरान पाक से एराज किया जाएगा जो जिक्र अल्लाह की तरफ से उतारा गया है। इस वजह से कुरान पाक के साथ बहुत तवज्जो और एतना की जरूरत है। कुरान पाक के एराज में ये भी है कि उसको ना पढ़ा जाए, उसकी तिलावत जरूर करनी चाहिए चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, कुछ न कुछ पढ़े आदमी कुरान शरीफ, समझना जरूरी नहीं है लेकिन पढ़े। दीन समझना जरूरी है, डायरेक्ट कुरान पढ़ते हुए उसका समझना कोई जरूरी नहीं है लेकिन कुरान में जो बात है एज ए इस्लाम इंसानों के लिए उसका समझना जरूरी है। मसलन कुरान कहता है कि अल्लाह पाक के साथ तौहीद होनी चाहिए, शिर्क मत करो। बस अगर किसी ने ये समझ लिया कि अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना है तो उसने उस लाइन का कुरान समझ लिया। कुरान ये कहता है कि रसूल की इत्तेबा करो, अगर वो रसूल की इत्तेबा कर रहा है तो ये बहस नहीं है कि कौन से सूरे में कौन से पारे में कौन सी आयत में ये बात है, उसके जहन में इतनी बात आ गई और वो मानता है कि हाँ भाई कुरान पाक का हुक्म है, रसूल की इत्तेबा करना है, बस ठीक है, वो आयत पर अमल हो गया उसका, कुरान वो सीख लिया उसने, उस लाइन का कुरान सीख लिया। नमाज पढ़ना फर्ज है, आदमी मानता है कि हाँ अल्लाह ने नमाज फर्ज फरमाई है, नमाज पढ़ना फर्ज है। अब ये जरूरी नहीं है आदमी को कि ये पता चले कि पहले पहले पारे में कहाँ कहाँ है, दूसरे पारे में कहाँ कहाँ है, कौन सी सूरत में किस जगह पर किस किन अल्फाज के साथ कुरान पाक में नमाज के फर्ज होने को बताया गया है, ये जानना जरूरी नहीं। जब आदमी को नमाज पढ़ना हो तो वजू करना जरूरी है। अगर एक आदमी को वजू आता है तो उसको ये मालूम करने की जरूरत नहीं है कि कुरान पाक में वजू वाली आयत है कहाँ पे। अब किसको भी नहीं मालूम है 25-25 साल से वजू कर रहा है, ये थोड़ी है कि वो कुरान पाक की उस आयत पर कुछ छोड़े हुए हैं बस वजू कर लिया। खुद सहाबे किराम पर वजू की आयत 18 साल के बाद उतरी, वजू शुरू करने के बाद से दीन जो है वो तो आ गया था लेकिन एज ए कानून वर्ल्ड में अभी वो नाजिल नहीं हुआ था, लेकिन हुजूर को बता दिया गया था कि नमाज से पहले वजू ऐसा करा दिया करो। 18 साल तक सहाबा वजू करते रहे, फिर सूरह मायदा में वो आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह फ़ाग़सिलू वुजूहकुम वअय्दियकुम इलल मराफ़िक़ वामसहू बिरुउसिकुम वअर्जुलकुम इलल काअबा। तो दीन का सीखना तो फर्ज है, जिसको कुरान पाक का सीखना ही कहते हैं वो हर एक मुसलमान पर जरूरी है। ज़कात है, रोज़ा है, हज है, माँ बाप के साथ सलूक है, औलाद के साथ सलूक है, हलाल कमाना है, हलाल खर्च करना है, हराम से बचना है, गुनाहों से बचना है, ये दीन सीखना कहलाता है। ये कुरान ही है, ये जो आदमी इसको जानता है वो कुरान ही जान रहा है, क्योंकि कुरान ही में इस्लाम है, कुरान ही में दीन है। बकिया डायरेक्ट कुरान पाक से समझने के वास्ते बहुत सीखना पड़ता है, हर आदमी के बस में है नहीं होता, वो होता नहीं। 4-6 साल अगर कोई कुरान शरीफ की समझने में और कुरान शरीफ को सीखने में लगा भी दिया तो भी नहीं समझ में आता, खाली तर्जुमा करने से तो खास आता भी नहीं होता। बकिया कुरान पाक ये असल एराज करना समझा जाता है, कुरान पाक से एराज करने में असल ये है कि कुरान ने जो जिंदगी दी उसको छोड़ना, कुरान पाक ने जो लाइफ दी, स्टाइल ऑफ लाइफ जिसको कह लीजिए, जिंदगी गुजारने का तरीका जो दिया उसको छोड़ना, ये कुरान पाक के एराज करने के हकीकी माना में है। और ये है कि उसको उसके मखारिज अदा नहीं करना, ये भी एराज करने में है। पढ़ते तो हैं लेकिन सही तरीके पर नहीं पढ़ते, अब अरबी जुबान मादरी जुबान नहीं है तो अब उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अपनी लैंग्वेज में उसका मतलब ये है कि जो लफ्ज़ जहाँ से निकालना है वैसे वहाँ से नहीं निकालते, जो हमको निकालने की आदत है वहाँ से उसका लफ्ज़ बोलते हैं। यह भी एराज में दाखिल किया है उलेमा ने। हर मुसलमान को इसकी फिक्र करना ज़रूरी है कि कुरान पाक के हरूफ को वहाँ से निकालने की आदत डालना जहाँ से वो हरफ निकलने का उसूल है, और तिलावत नहीं करना यह भी उसमें शामिल है, एराज में दाखिल है। इसीलिए कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम हो, कुरान पाक को सही पढ़ने का एहतमाम हो, कुरान पाक के मजामीन को समझने का एहतमाम हो। अगर कोई डायरेक्ट कुरान पाक पढ़ के समझाने का मिल जाए आदमी तो उसके पास वो भी सिलसिला चले, जैसे हम यहाँ दरस कुरान करते हैं कि हम अपने बड़ों से जो कुछ समझे हुए सीखे हुए हैं वो सुनाते हैं, आप उसको सुनते हैं। ये तरीका है अगर कुरान ही को बराह रास्त समझना है तो। बाकी आप कहीं भी कुरान शरीफ को सुनेंगे, सुनने को जाएंगे, समझने को जाएंगे तो उसका बड़ा हिस्सा तो आपको नसीहतों और इबरतों वगैरह से मुताल्लिक मिलेगा। कारोबार के क्या मसाइल हैं, डीलिंग के क्या मसाइल हैं, तिजारत के क्या मसाइल हैं, क्या खाना हलाल है, क्या खाना हराम है, कौन सी चीज़ कैसे करना है, लिबास में क्या तरीका है, अकायद क्या क्या होने चाहिए, मामलात कैसे होने चाहिए, आदतें कैसी होनी चाहिए, इबादतें कैसी होनी चाहिए, ये सब कहाँ आता है? वो कहीं 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 आता है, उसका वो छोटा सा हिस्सा आता है, फिर हदीस में उसकी तफसील रहती है। तो एराज में इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें हैं। अब ये कभी कभी होता है खुली एराज, कभी होता है जुज़वी एराज। खुली एराज का मतलब है मानना ही नहीं, तो मैं कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानता नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, के हुज़ूर को अल्लाह का रसूल नहीं मानता नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर ऐसा एराज पाया गया तो इसको खुली एराज कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, इसकी कोई तलाफी नहीं है। इसकी ऐसा आदमी बचने के कोई चांसेस नहीं है। ये शोर है कि ऐसा आदमी जहन्नम में जाएगा और हरगिज़ भी जन्नत में नहीं जाएगा। वो वक्त का प्रेसिडेंट हो, वो हफ्त तकलीम का बादशाह हो, वो सुपर पावर रखता हो अपने पास, वो बहुत बड़ा नोबल याफ्ता साइंसदान हो, उसके पास वो बहुत ज़्यादा रिच मैन हो, उसका असर हो, कुछ भी हो, तुरुम का अपनी जगह पर कुछ भी होंगे, अगर एराज कुल्ली पाया गया है तो उसकी बख्शिश का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, सीधा जहन्नम। उसने दुनिया में रिफाही काम कितने ही किए हों, पूरी दुनिया ने मिलकर उसको नोबल इनाम दिया हो तो भाई ये सबकी माँ है, इसने इतनी खिदमत की है। इस्लाम का अकीदा यह है कि वो सीधा जहन्नम में गई, उसके अलावा उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। और इसमें डाउट भी नहीं करना, क्योंकि डाउट करना कुरान पाक में डाउट करने के बराबर है, डाउट नहीं किया जा सकता इसमें। जिसके पास इस्लाम नहीं है वो जहन्नम है, कोई हो, तो जिसके पास इस्लाम नहीं है वो यहूदी भी नहीं रहता, वो ईसाई भी नहीं रहता, क्योंकि यहूदी के सही होने के लिए ज़रूरी है कि वो मुसलमान हो जाए। यहूदी के सही होने के लिए ज़रूरी है कि वो मुसलमान हो जाए। इस्लाम आने से पहले तो यहूदी के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं था यहूदी रहने के लिए, लेकिन इस्लाम आने के बाद में यहूदी के सही होने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। इस्लाम आने से पहले ईसाई के लिए ज़रूरी नहीं था कि वो मुसलमान हो, लेकिन इस्लाम आने के बाद में ईसाई के सही होने के लिए यह ज़रूरी है कि वो मुसलमान हो जाए। अगर कोई यहूदी मुसलमान नहीं होता तो उसने मूसा को भी झूठा कहा है, उसने तौरात को भी झूठा कहा है। वो यूँ कहता है कि तौरात भी झूठी और मूसा भी झूठे, नऊज़ बिल्लाह। अगर कोई ईसाई क्रिश्चियन मुसलमान नहीं होता तो उसने जीसस को भी झूठा कहा, उसने बाइबल को भी झूठा माना, कि जीसस ने भी गलत बयानी से काम लिया और बाइबल ने भी गलत बयानी से काम लिया। और जो अल्लाह के रसूल को झूठा बोले और अल्लाह की किताब को झूठा बोले तो वो तो मुसलमान, वो तो उसके बख्शिश का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस जमाने में जो मजहब अल्लाह का पसंदीदा होता है उस मजहब पर ही बख्शिश का मदार होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद, इस्लाम आ जाने के बाद में इस्लाम मदार नजात है, और ये कुरान पाक में है, अमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को लाएगा कबूल नहीं किया जाएगा। तो दीन तो अल्लाह के लिए होता, वो कह रहे हैं मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। छोटी से छोटी जगह से लेके बड़ी से बड़ी जगह पर इमिग्रेशन के वास्ते आपको एक फाइल दिया गया कि ये फाइल फिलअप करो, कहेंगे नहीं हमारे बाबा का एक फाइल रखा हुआ है वो भर के देता हूँ मैं, काम चलने वाला है इससे कोई? किसी कंपनी में जॉब करने के लिए गए, उन्होंने कहा एप्लीकेशन इस तरीके से दीजिए, उन्होंने कहा नहीं एप्लीकेशन में जो है वो इंडिया में जो दिया करता था वो दूंगा, और पाकिस्तान का हमारा एक बना हुआ है उर्दू में वो मैं दे दूंगा आपको। कहीं ऐसा हो दुनिया में, कहीं ऐसा होता है किसी छोटी से छोटी जगह में? तो ये कानून तो अल्लाह पाक का है जो आसमानों और जमीनों को पैदा करने वाला है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसके हाथ में जन्नत और जहन्नम है, इंसानों की अबदुल्लाबाद की जिंदगी का फैसला जिसके हाथ में है। अब उसका कोई जाब्ता ही नहीं है, वो कहे कि नहीं मैं ऐसा मजहब लाता हूँ ये भी एक्सेप्ट करो, कहता मैं ऐसा मजहब लाता हूँ ये भी एक्सेप्ट करो, मैं मेरा ये मजहब है वो भी एक्सेप्ट, क्यों करें भाई हम तुम्हारे बाकी हैं कुछ? किसी का कोई मजहब कबूल नहीं होगा। मर जाए आदमी, खप जाए, सन्यासी हो जाए, मुजाहिदे में अपने आप को डाल ले, पहाड़ों में अपनी जिंदगी गुजार दे, क्योंकि अल्लाह को खुश करने के वास्ते पहाड़ों में रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, अर्जुना वाला बच्चे नहीं होने दूंगा, और कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, भूखा मरूंगा, पानी में खड़ा रहूंगा, एक पैर पे खड़ा रहूंगा, कांटों पे खड़ा रहूंगा। वो देखा होगा आपने, वो चप्पल के जो है ना कीले बनाते उसके ऊपर ठहर जाते, उसकी मशक करते ठहरने की, मैंने भी देखे हैं वो बराबर 6 घंटे, 36 36 घंटे, 24 24 घंटे ठहर जाता है एकदम तेज कीलों के ऊपर। वो समझ रहे ये बहुत बड़ा मुजाहिदा है, इससे तो अल्लाह खुशी हो गया होगा, क्यों खुश होगा भाई, वो कोई जाप्ता ही नहीं हो। तो एराज जो है अगर खुली पाया गया है तो फिर तो वो ऐसा बोझ उठाएगा कि वो हमेशा के लिए खालिदी नफी, वो उस बोझ में हमेशा रहेगा। बोझ में हमेशा रहने का जो लफ्ज है वो इसी बात को बता रहा है कि यहाँ एराज से असली मुराद एराज खुली है, यानी इस्लाम न लाना। क्योंकि जो जुज़वी बोझ उठाएगा वो, यानी ईमान भी उसके पास है, बदअमली भी उसने की, वो हमेशा नहीं रहेगा उस बोझ में। वसा अलहुम यौमल क़ियामत हमला, और ये बोझ उनके लिए क़ियामत के दिन बहुत बुरा होगा, कोई आसान नहीं होगा उनके लिए, कोई ईजी नहीं होगा। ये यौम युन्फ़खु फिस्सूर, ये उस दिन की बात है जिस दिन सूर में फूंक दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता बनाया है, उनका नाम इसराफील अलैहिस्सलाम है, इसराफील है, और अल्लाह तबारक व तआला ने एक सींग नुमा चीज बनाई है मखलूक, जैसे गाय की सींग होती है, यानी एक तरफ से बारीक दूसरी तरफ से खुली हुई, जैसे माइक वगैरह लाउडस्पीकर वगैरह हुआ करते हैं, वैसी चीज बनी हुई है, मगर इतनी नहीं है वो, बारिश दो बारिश की, बहुत बड़ी है वो, क्योंकि वो फरिश्ता जो है ना वो भी बहुत बड़ा है। इसराफील अलैहिस्सलाम फरिश्तों में गालिबन अपनी फिजिकली जसामत के एतबार से सबसे बड़े हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से 12,000 गुना बड़े हैं, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन को अपने पैर के किनारे पर उठा ले सकते हैं, और 600 उनके पर हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम असली हालत में खड़े हो गए तो सर आसमान में चले जाता और पैर जमीन में चले जाते, ये हदीस में है हुजूर ने फरमाया। एक मरतबा कुर्सी पर बैठकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने की तरफ का आसमान नहीं दिख रहा था, और उफुक पे थे वो, जैसे चांद नजर आता, जैसे सूरज नजर आता, उतने वैसे दूर वाले मसाफत पर, ऐसा नहीं था बिल्कुल आंखों के सामने आ गए तो छुप गया सब, नहीं, दूर के हिस्से में जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुर्सी पे आ गए थे तो हुजूर ने फरमाया कि सद्दल उफुक, मेरे ऊपर पूरा उफुक बंद हो गया था, यानी पीछे का ऐसा नजर नहीं आ रहा था, आसमानी नजर नहीं आ रहा था पीछे का, खाली बैठे थे कुर्सी पे आके, उधर बेहोश भी हो गए थे उसको, क्योंकि जाहिर है कि जसामत के साथ आपने देखा और नॉर्मल हालत में देखा था, आपका एकदम एक तासुर हुआ उसकी तबीयत, उस वजह से आप वो हो गए। उनसे 12,000 गुना बड़े हैं इसराफील अलैहिस्सलाम। हदीस में आता है कि उन्होंने एक पैर पर एक हाथ में अपने ले लिए हैं उससे फूकने के लिए, और अपने मुंह में उसको लगा लिया है, और एक्शन में आ गए हैं। एक्शन का मतलब ये होता है, एक तो है बैठे हुए हैं, और एक ये है कि जब मुकाबला वगैरह होता है तो 1 2 3 जब करते ना, तो उस वक्त में आदमी कैसा एक्शन में होता है, फरमा उस एक्शन में वो यानी रेडी हालत में है बिल्कुल, कि अल्लाह पाक का इज्न हो और बता दें वो कि बस स्टार्ट कर दो, मुझे स्टार्ट कर देना है, इस पोजिशन में है वो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस हालत में देखा है, और वो थकते उकते नहीं वैसा बैठे रहने से, बोलेंगे कि पता नहीं कब से बेचारा बैठा हुआ है, घुटनों में दर्द हो रहा होगा उसके, उसकी घुटने उठने में दर्द नहीं होता, उसका घुटना कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, उसको घुटना भी उसका घुटना ही होगा, तो वो फूकेंगे उसमें। और अल्लाह ने उनके फूकने में ये बात रखी हुई है कि अगर वो जिंदा करने की नीयत से फूकेंगे तो सारी मखलूक जिंदा हो जाएगी, और अगर वो मारने की नीयत से फूकेंगे तो सारे मर जाएंगे। क्योंकि जब फूकेंगे तो इतने इतना ताकतवर होगा वो कि कोई कायनात की चीज नहीं होगी जिसको वो उस फूक में उड़ा नहीं देंगे। जैसे छोटे बच्चे बबल उड़ाते हैं, साबुन के जो फुग्गे उड़ाते हैं, तो ये जो जो यूनिवर्सल है और उसमें ये बड़े बड़े बने हुए हैं सारा निज़ाम, सूरज जो है ना वो एक बबल है, चांद एक बबल है, जमीन एक बबल है, मिर्रीख एक बबल है, जुहल एक बबल है, ये कहकशाएं जो है ना ये भी एक बबल की तरह है उनके पास। तो जैसे बच्चों के लिए वो हल्की चीज़ है, इसराफील अलैहिस्सलाम के लिए वो भी हल्की चीज़ है, ये वो उसमें फूंक देंगे और पूरा निज़ाम दरहम बरहम कर देंगे। और जब अल्लाह तबारक व तआला उनको कहेगा दोबारा फूकने को, इस नीयत से कि ये चीज़ों के अंदर जो चीज़ें काबिले जिंदगी हैं वो जिंदा हो जाएं, तो फिर वो ऐसे ऐसे सुर में फूकेंगे कि जिंदगी आ जाए लोगों, लोग पैदा हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो अपने बयान में ये बात समझाया करते थे कि एक ही आदमी की फूक में जिंदगी भी और एक ही आदमी की फूक में मौत भी है, कैसे होता है? तो कहने लगे ये कोई ऐसी चीज नहीं है, जब आपकी चाय गर्म होती है तो आप उसको फूंक कर ठंडी कर लेते हैं, जब आपकी आंख जो है ना वो मसलती रहती है और गुदगुदी उसमें होती रहती है तो आप फूंक के उसको गर्म कर लेते हैं। आपकी फूंक में ये है कि अगर आपको गर्म करना है तो फूंक के गर्म कर लेते हैं, और आपकी फूंक में ये है कि आपको ठंडा करना है तो आप ठंडा कर लेते हैं। चाय को ठंडा करते हैं फूंक के, और आंख को गर्म करते हैं फूंक के, कपड़े को फूंकिए जोर से, उसके बाद आंख पे लगाइए, सेके जैसा हो जाता है। आदमी अपने हिसाब से ठंडा गर्म कर रहा है, इसराफील अलैहिस्सलाम अपने हिसाब से ठंडा गर्म कर देते हैं, अल्लाह पाक ने बनाया, उनकी कुदरत में वो चीज़ है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो बोझ लोग उठाएंगे ये उस दिन होगा जिस दिन सूर में फूंक दिया जाएगा, हमायून फकुत सूर, जब सूर में फूंक दिया जाएगा। वनक्षरुल मुजरिमीन यौमैदिन ज़ुरका, और जमा कर लेंगे हम मुजरिमों को उस दिन अंधी हालत में या इंतहाई नागवार आंखियों की हालत में। ज़ुरकन के दो तर्जुमे करते हैं मुफस्सिरीन, एक तो ज़ुरकन का तर्जुमा आमा से भी करते हैं, तो मुजरिम होंगे उनको अंधा उठाया जाएगा। वरा शुरू हो यौमल क़ियामत आमा, हम कल क़ियामत में जो हमारी आयात से और हमारी बातों से अंधा बना इस दुनिया में, हम उसको आखिरत में अंधा उठाएंगे। अल्लाह ताला पूछे, अल्लाह ताला से कहेगा वो कि मुझे आपने अंधा क्यों उठाया, दुनिया में तो मैं अंधा नहीं था। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तू अंधा बना था मेरी आयतों से, इसलिए मैंने तुझे अंधा उठाया है। قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى। ऐसे ही अंधा उठाएंगे हम, जब हमारी बातें तेरे पास आई थी तो तू अंधा बना था, लिहाजा आज हम तेरे साथ यही सलूक कर रहे हैं। जैसे वो तैसा कमा कर दिन तू दानो, जैसे करोगे वैसे भरोगे। يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا, जो लोग कल क्यामत में वो हशर किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे और इंतहाई नागवार सूरतों के साथ होंगे, उनकी आंखें इंतहाई नागवार होंगी। दूसरा तर्जुमा ज़ुरकन का ये है कि ऐसी आंख जो इंतहाई पीली हो और उसमें फिर सब्जी हो, हरापन हो। तो इंसानों में सबसे गंदी और ख़राब और ड्रावनी आंख ये समझी जाती थी अरबों में, तो अल्लाह पाक ने उसी को बयान फरमाया कि वो इस आँख के साथ उठाए जाएंगे, इंतहाई पीले और उसमें सब्जी, देखे डर हो जाए। तो वो उनकी हालत खुद ऐसी होगी कि खुद उनको अपने से नफरत आए, ऐसी तो उनकी आंखें होंगी। और हाल ये होगा कि ये तखाफतू न बहन हूँ, ये आपस में चुपके चुपके बातें करेंगे, क्या होगा इन लबिस तुम इल्ला अशरा, और ये कहेंगे कि तुम दुनिया में कब तक रहे, 10 दिन रहे बस। जब उठाया जाएगा तो कहेंगे कि हम 10 दिन रहे, या तो दुनिया में मुराद है या कब्र में मुराद है, क्योंकि जब उठाए जाएंगे तो कब्र से उठाए जाएंगे ना। हालांकि सबको मालूम है कि दुनिया की लाइफ के मुकाबले में कब्र की लाइफ ज्यादा है बहुत। तो वो कहेंगे कि तुम 10 दिन रहे होंगे, मतलब बात का ये है कि हम तो दुनिया में ये समझ रहे थे कि उठाया ही नहीं जाना है, यहाँ तो उठाया नहीं जाना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो थोड़ा ज्यादा ठहरने का मौका भी नहीं दिया गया है, चलो एक लंबा टाइम पड़े हुए रहे उसमें। जाहिर है कि 10 दिन से तो ज्यादा उसमें पड़े हुए होंगे, लेकिन उठने के बाद याद कुछ नहीं रहता, टाइम गुजर जाने के बाद में याद, जो मुसीबत और हौलना की वहाँ होगी परेशानी, उस परेशानी में वो जो टाइम गुजरा था वो बहुत थोड़ा नजर आएगा। वो कहेंगे कि 10 दिन रहे थे हम लोग, इल्ला बिस्तुम इल्ला अशरा, तुम लोग 10 दिन कब्रों में पड़े रहे। حالانکہ پہلے سور تک جو لوگ پڑے ہوئے ہوں گے قبروں میں وہ تو ہوں گے، لیکن پہلا سور جو سارے انسانوں کو ہلاک کرنے کا ہے، سارے مخلوقات کو ختم کرنے کا ہے، اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو آسمان بھی پھٹ جائے گا، زمین بھی ٹوٹ جائے گی، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر پڑیں گے، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، اکھڑ جائیں گے زمین سے، اور روئی کے گولوں کی طرح سے وہ اڑنا شروع ہو جائیں گے، جیسے روئی ہلکے روئی کے گولوں کو، روئی کو جو ہے نا ہوا ادھر سے ادھر اڑاتی ہے، ایسے پہاڑ ادھر سے ادھر اڑیں گے، کوئی چیز اپنی حالت پہ نہیں رہے گی، انسان کے کیا حیثیت رہے گی، انسان چپٹی چپٹی کا شروع وہ تو ہے ہی 6 فٹ کا، جب پہاڑ زمین سے اکھڑ جائے گا اتنی طاقت کے ساتھ میں وہ پھونکیں گے تو آدمی کی حیثیت ہی کیا رہے گی، ایک تو پھونک کی طاقت اور دوسرے آواز، اس میں سورہ اسرافیل میں آواز بہت ہے، ایسی آواز کہ لوگوں کے جگر پھٹ جائیں گے، شروع میں دل پھٹ کے اور جگر پھٹ کے مر جائیں گے جتنے جاندار، پھر وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا اسرافیل کو رکنے کا، ان کے پاس میں کم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہو، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب زمین کی ساری مخلوق مر جائے گی تو آسمان کی ساری مخلوق کو بھی ختم کرا دیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے اس سور سے، اس کے بعد میں اسرافیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون بچا، تو اللہ اسرافیل کہیں گے کہ پروردگار کوئی نہیں بچا، ایک میں ہی بچا ہوا، تو اللہ فرمائیں گے کہ اب تو تیرے بھی باقی رہنے کی ضرورت نہیں، تو بھی مر جا، تو نفس اولا کے وقت میں سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام کو بھی ختم کر دیں گے اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل کو زندہ کر کے کہیں گے کہ پھر سور پھونکو، تو پہلے سور اور دوسرے سور کے بیچ میں 40 سال کا وقفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اب یہ 40 دنیا کے ہوں گے یا 40 آخرت کے، اگر 40 آخرت کے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے اب اندازہ لگائی کتنا بڑا عرصہ ہوگا، اتنا ٹائم پڑے ہوئے رہنے کے باوجود جب اٹھیں گے تو پریشانی میں یہی سمجھیں گے کہ 10 دن رہے بس، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو وہ آپس میں کہہ رہے ہوں گے، بظاہر تو یہ تخافتون چپکے چپکے کریں گے لیکن ہمیں تو پتہ ہے کون کیا بات کر رہا ہے، اذ یقول امثلہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ان میں سب سے زیادہ فائب الرائے، صحیح رائے والا کہے گا کہ نہیں تم تو ایک ہی دن رہے تھے وہاں، ان میں جو صاحب الرائے ہوگا، یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک ہی دن رہے تھے، آخرت میں رہائش کے اعتبار سے وہ ایک دن کا تناسب بھی نہیں پڑتا ہو، مگر ان میں جو زیادہ سب سے زیادہ محسوس کرنے والا ہوگا وہ یوں کہے گا کہ نہیں 10 دن تو تم بہت لمبی بات بول رہے ہیں، ہم تو ایک ہی دن رہے تھے، وہ یوں کہیں گے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا، جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں پہاڑستان میں، ان کو پتا ہے کہ پہاڑ کتنی بڑی مخلوق ہوتی ہے اور کیسا جو ہے اس کی حیبت ہوتی ہے، کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ آخر ان کا ہوگا کیا، خاص طور پر جبال مکے کے اطراف میں قرب جوار میں رہنے والوں کو خوب اندازہ ہے کہ کتنی پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں وہاں، اور جن جن ملکوں کے اندر پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، سینکڑوں میلوں تک پہاڑ اور اتنے اونچے اونچے پہاڑ کہ اس کے اندر کا ایک پورا نظام، تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا، آپ کہیں سب مر جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا، فقل ینصفھا ربی نصفا، آپ یہ فرما دیجئے کہ تمہارا پر میرا پروردگار ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، بالکل بالکل باریک بنا دے گا، فیذروھا قاعا صفصفا، اور ایسا چٹیل میدان زمین پہ بنا دے گا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ اس میں گڈھا ہوگا نہ گڑا ہوگا، کوئی اٹھی ہوئی چیز زمین پہ ابری ہوئی ہو کوئی نہیں رہے گی، اور کوئی گڑے کی چیز ہو نہیں، پوری یہاں سے وہاں تک مسطح فلاٹ ہو جائے گا، مسطح زمین، اور کوئی چیز نہیں، ایک درخت نہیں، ایک بلڈنگ نہیں، کچھ نہیں، جیسے سب ساری زمین کی ساری بلڈنگوں پہ جیسے بلڈوزر چلا دیے جائے اور ختم کر دیے جائیں گے، پورے انسان بھی نہیں رہیں گے، جانور بھی نہیں رہیں گے، پہاڑ بھی نہیں رہیں گے، درخت بھی نہیں رہیں گے، کوئی بلڈنگ نہیں رہے گی، کوئی عمارت نہیں رہے گی، یہاں سے وہاں تک سب ختم، فیضر و قان بالکل چٹیل میدان کر دے گا اللہ پاک، صف صف اللہ ترا فیھا عوجا ولا امتا، نہ تو اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن رہے گا اور نہ اس کے اندر نشیب و فراز ہوگا، اونچ نیچ ہوگی، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن ایک اور کام ہوگا کہ لوگ اب بلانے والے کے پیچھے لگ جائیں گے اور کوئی کجی نہیں کر سکے گا، جب لوگوں کو زندہ کریں گے اسرافیل علیہ السلام دوسری پھونک سے، تو لوگ جیسے ہی زمینوں سے اٹھیں گے، حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسے لوگ اٹھیں گے زمین سے جیسے پودے اٹھتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو زمین سے جیسے ہریالی اگتی ہے، سبزی اگتی ہے، तरकारी उगती है, छोटे छोटे पौधे उगते हैं, ऐसे लोग सर उठाएंगे। अब या तो इस दुनिया में तो पैदा होते ना भाई, डिलीवरी का सिस्टम है, वैसा नहीं होने वाला, वहां पे कोई है ही नहीं डिलीवर करने के वास्ते, जो करने वाला है डिलीवर वो भी अंदर ही है, तो वहां पे तो ना मर्द है कोई ना औरत है कोई, तो अब ये लोग होंगे तो कैसे पैदा होंगे। तो हदीस में आता है, हदीस शरीफ में हुजूर ने फरमाया कि लोग ऐसे उठेंगे जैसे जमीन से पौधा उगता है। तो जब सब उठेंगे, हजरत मोहिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि 1000 साल तक वो अपनी जगह पर खड़े रहेंगे सारे, जैसे दरख्त खड़ा रहता है, हालांकि होश होगा सबको, दरख्त नहीं है वो, इंसान ही होंगे वो, लेकिन हौलनाकी और परेशानी में, और इजाजत नहीं होगी किसी को अपनी जगह से मुंह करने के, खड़े रहो बस, खड़े रहे तो खड़े रहे, 1000 साल गुजरेंगे इसमें। आप बोलेंगे कि भूखे प्यासे, तो बोले भूख भी रहेगी और प्यास भी रहेगी, लेकिन खाना भी नहीं पीना भी नहीं, रहना बस। अल्लाह ताला ने जो उस दिन से डराया है, तो वो अल्लाह ताला ने उस दिन को बहुत शदीद दिन कहा, बहुत सख्त कहा, तो अपने हिसाब से जिस चीज को वो सख्त बोल रहे हैं आप अंदाजा कीजिए। फकीफ तत्तकून इन सफर तुम यौम यजअलुल विलदाना शीबा, क्या होगा तुम्हारा उस दिन अगर तुमने कुफ्र वाली जिंदगी गुजारी, जो दिन बच्चों को भी बूढ़ा बना देगा, बच्चों के बाल सफेद हो जाएंगे उसकी परेशानी को देख। तो उस दिन जब लोग अपनी अपनी जगह पर उठे हुए होंगे जमीन से उग के पौधों की तरह से, तो इसराफील अलैहिस्सलाम सखरतुल कुद्स पर बैतुल मुकद्दस के वो जो पत्थर है उसका, वहां पर खड़े होकर एक आवाज लगाएंगे, हदीस शरीफ में आता है, और ये कहेंगे कि तुम्हारा परवरदिगार तुमको एक जगह जमा होने को कहता है ताकि तुम्हारे आमाल का हिसाब किताब लिया जाए। तो जैसे उनकी आवाज आएगी सब लोग मुंह होना शुरू हो जाएंगे, उसको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यौम इज़िन यत्तबिउन अद्दाइया, उस दिन लोग पुकारने वाले की पुकार के पीछे चलेंगे, ला इवज लहू, और किसी किस्म की कजी टेढ़ापन नहीं कर सकेंगे, आई बाई शाई नहीं हो सकेंगे, ऐतना मरोड़ना, इनकार करना, न मानना, ये हौसला किसी में नहीं होगा। वखशअत अलअस्वातुल रहमान, और रहमान के लिए सारी आवाजें पस्त हो चुकी होंगी, किसी को बोलने का मुंह खोलने का यारा नहीं होगा, सब मुंह सबके सबके मुंह बंद हो जाएंगे, कुछ बोले जैसा नहीं है, किसको बोले क्या बोले, और हैबत इतनी होगी फला तस्मा इल्ला हमसा, आपस में अगर कुछ बोलना है तो सिवाय खुश खुश और कुछ नहीं करेंगे। हम कहते हैं बिल्कुल आहिस्ता से बात को, जिसमें सीन सीन की आवाज आती है, कोई शोर वाली आवाज, हालांकि सारी मखलूक जमा होगी उस दिन, अव्वलीन और आखरीन जमा होंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने इंसान पैदा होंगे वो सारे के सारे जमा होंगे, और सारे जिन्नात भी जमा होंगे, जिन्नात इंसानों को देखेंगे, इंसान जिन्नात को देखेंगे, वहां एक दूसरे से छुपने का निजाम नहीं है। तो वहां इतनी पूरी भीड़ के अंदर किसी आदमी को ये यारा नहीं होगा कि वो जोर से आवाज निकाले, तब इतनी परेशानी में हो। वो खशअतिल अस्वातुर रहमान, सारी आवाजें रहमान के लिए पस्त हो जाएंगी, फला तस्मा इल्ला हमसा, और सिवाय हम्स के और सिवाय आहिस्ता बात की और कुछ सुनाई नहीं देगा। यौम इज़िन ला तनफ़ाउ शफ़ा, उस दिन एक और काम होगा, सिफारिश किसी की नहीं चलेगी, मेरा काम कैसे बनेगा, किससे मैं अपना काम बनाऊं, तो सिफारिश नहीं चलेगी। यौम इज़िन ला तनफ़ाउ शफ़ा, उस दिन शिफात नहीं नफा देगी किसी को, इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान, सिवाय उनके जिसको रहमान ने इजाजत दी होगी कि हाँ तुम सिफारिश करो, वरदी लहू कौला, और सिवाय उसके जिसकी बात से रहमान राजी होगा, जिसको बोलने से रहमान राजी होगा वही बोलेगा, दूसरा बोलेगा तो फिर वो बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा, और फिर वो बोलने वाला जब बोलेगा कि जिसके बारे में शिफात कर रहा है उसकी इजाजत मिले कि हाँ इसके बारे में तुम शिफात कर सकते हो, वहां का शिफात का और सिफारिश का सिस्टम अलग है इस दुनिया के सिफारिश के मुकाबले में, इसको समझना है थोड़ा सा। दुनिया के अंदर सिफारिश और शिफात जो होती है वो नामालूम बात के इल्म में लाने का नाम है, ये काबिल हमदर्दी है आदमी, काबिल रहम है आदमी, वाकईतन परेशान है, उनको नहीं मालूम है जिनके पास ये आदमी जा रहा है, तो दरमियान का आदमी ये बोलता है कि भाई वाकईतन मैं जानता हूँ इसको, ये बेचारा काबिल रहम है, आप इस पर फजल फरमा दीजिए, आपके पास ये चीज़ है, आप इसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं। तो ये सिफारिश करने का काम दुनिया में इल्म में लाना होता है उस आदमी की जरूरत को और उस आदमी के काबिल रहम होने को, आखिरत में सिफारिश इस काम के लिए नहीं है, ये काम नहीं करेगी सिफारिश, इस काम के लिए है ही नहीं सिफारिश वहां पर। وہاں آخرت میں جو سفارش ہے، دنیا میں جن لوگوں کو لوگ کم اور معمولی سمجھتے تھے ان کی عزت دکھانے کے لیے ہے کہ جن کو تم معمولی سمجھتے تھے آج ان کا یہ مقام ہے کہ ان کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ فنا فنا قسم کے لوگوں کی سفارش کر سکتے ہیں، ہم سنیں گے ان کی بات. اور یہ جو سفارش کرنے والے ہیں ان کی جو محبوبیت ہے، ان کا جو تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کو دکھانے کے لیے یہ ہمارے محبوب ہیں، اس موقع پر ہم ان کی بات رکھنا چاہتے ہیں، بس ہماری مرضی ہے. تو اللہ من اذن له الرحمن، رحمان نے جس کو اجازت دی ہوگی. جتنے معبودان باطلہ کو پوچھتے تھے مشرکین، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ آج ہم سے ناراض ہو گیا تو کوئی پرواہ نہیں، ان کو بول کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرا لیں گے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرا لیں گے. ہم جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کے ساتھ خوش عقیدگی رکھتے ہیں، یہ ہماری سفارش وہاں کر کے اللہ کو خوش کر دیں گے، چونکہ ہم اس وقت یہاں اللہ کو خوش نہیں کر سکتے، ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، لہذا ہم ان کی ہی پوجا کر لیتے ہیں، یہ کل کے دن ہمارا کام بنا لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، جس کو میں بولوں گا وہ سفارش کرے گا، جس کے بارے میں تم توقع کر رہے ہو وہ نہیں کرے گا. اور اللہ نے بتا دیا کہ معبودان باطلہ تو تمہارے ساتھ جہنم میں ڈالے جانے والے ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، ان کو بھی جہنم میں ڈال. جتنے پتھروں کی پوجا ہوگی وہ سارے پتھر جہنم میں جائیں گے، جتنی لکڑیوں کے بت بنا کے پوجا گیا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سونے کے، پتل کے، چاندی کے، جو بھی غیر اللہ کی جتنی پوجا ہوئی، سوائے ان محبوب بندوں کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، بحیثیت یعنی وہ چیز نہیں ہے وہ، بلکہ بندے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو ان سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی تمہاری کیوں کی گئی، اور اسی میں ان کا پتا پانی ہو جائیں گا. اور مگر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا دے گا، جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جیسے دوسرے لوگ ہیں جن کی پوجا کی گئی دنیا، ان کو نہیں ڈالا جائے گا ان کے ساتھ جہنم میں، لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزوں کی پوجا کی گئی یا خیالات کے طور پر نام رکھ لیے گئے، اسٹیچو بنا دیا ہے کہ اس کا ایک نام رکھ دیا، اس کی پوجا شروع کر دی. اللہ نے فرمایا کہ یہ نام ہے جو تم نے رکھ لی، حقیقت سے اس کا کیا تعلق ہے، کبھی اس میں جان آئی نہیں اس لکڑی میں جس کو تم نے جس کا اسٹیچو تم نے بنایا ہے، اس کی تم پوجا کر رہے ہو. تو آخرت میں سفارش کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، انبیاء ہیں، سب سے پہلے امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دیگر انبیاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، شہداء ہیں، حفاظ ہیں، حاجی ہیں، علماء ہیں، ان لوگوں کو ان کی محبوبیت کے اعتبار سے اجازت دی جائے گی کہ تم فلاں فلاں کی، تم اتنے آدمیوں کی، تم اتنے آدمیوں کی سفارش کر سکتے ہو، فلاں فلاں قسم کے لوگوں میں کر سکتے ہو، ہر ایک کو اجازت نہیں ہوگی، قسمیں مقرر کر دی جائیں گی. جیسے کوئی مشرک ہے، کافر ہے، اس کے اوپر سفارش کی اجازت نہیں ہوگی کہ مشرک کی سفارش نہیں کرنا کوئی، کافر کی سفارش نہیں کرنا کوئی، بدعتی کی سفارش نہیں کرنا کوئی، اور جو گنہگار ہیں ان کی اجازت دی جائے گی، اس میں بھی لمٹ رہے گی ہر ایک کی. یہ فرمایا اللہ من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ رحمان نے جس کو اجازت دی ہو، ورضی له قولا، اور اس کی بات سے رحمان راضی ہو، جس کے بولنے سے رحمان راضی ہو بس وہی بولے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لوگوں کے سامنے کی باتوں کو، پیچھے کی باتوں کو اللہ پاک جانتا ہے، اس لیے کسی کو بتانے اور جتانے کے لیے کسی کی سفارش نہیں ہے وہاں پہ، قابل رحم ہے یا نہیں ہے، ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، مجبور ہے یا نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہے یہاں پر، وہاں سب معلوم ہے. وعلیم بذات الصدور ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سامنے کی باتوں کو لوگوں کے وہ جانتے ہیں اللہ پاک، اور جو پیچھے ہیں ان کے وہ سب جانتے ہیں. ولا يحيطون به علما، اور لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، جو مخلوق ہے اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا، ان کو احاطہ نہیں ہے، احاطہ تو اللہ کو ہوتا ہے، کور تو اللہ کرتے ہیں سب کو، اللہ کو کوئی کور نہیں کرتا. اور جو علم کی بات ہے پوری وہ سب لوگوں کو نہیں معلوم ہے. وعنت الوجوه للحي القيوم، اور سارے چہرے جھک جائیں گے اس ذات کے لیے جو کہ زندہ ہے اور اس کے لیے جو قیوم ہے. اللہ پاک کی صفت ہے حی اور قیوم، سب اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں گے، بڑے بڑے فرائنہ، بڑے بڑے جبابرہ، بڑے بڑے قیاسرہ، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے ملاحدہ ملحدین اور دہریے اور سورما قسم کے لوگ، غرور اور تکبر والے، پیسے والے، عہدے والے، دولت والے، سب کی بڑائی خاک میں مل جائے گی اور سب اپنی گردن جھکا کے کھڑے ہو جائیں گے. وانت الوجوہ، سارے چہرے اور ساری گردنیں جھک جائیں گی للحی القیوم، اس ذات کے لیے جو زندہ ہے اور اس کے لیے جو کہ قائم رہنے والی ہے. وقد خاب من حمل ظلما، और जो जुल्म लेकर आया होगा वो बड़ा नुकसान उस दिन उठाएगा। जुल्म की तफसीर हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला नुमा ने शिर्क से की है। उस दिन जिसने शिर्क का इर्तिकाब किया होगा वो बड़े नुकसान में रहेगा। इसलिए इस्लाम की सबसे बड़ी बुनियाद जो है ना वो तौहीद है। तौहीद के साथ आदमी चला गया तो गुनाह का जो मामला है ना वो एडजस्टेबल हो जाएगा एक माना में। वो किस टाइप का एडजस्टेबल होगा मगर होगा एडजस्ट फिर भी। लेकिन तौहीद अगर नहीं है तो फिर उसका कोई इलाज ही नहीं। इसलिए इस्लाम तौहीद की जो दावत देता है तो इस्लाम में तौहीद है क्या, शिर्क है क्या, हर मुसलमान का ये फर्ज बनता है कि वो उसको अच्छी तरह से समझ के अल्लाह पाक की तौहीद का कायल रहना। तौहीद की मनाते हैं एक करार देना, अल्लाह तबारक व ताला को मानना और अल्लाह तबारक व ताला को एक मानना, और अल्लाह तबारक व ताला को वैसे मानना जैसे अल्लाह चाहते हैं, और अल्लाह तबारक व ताला को एक वैसा रखना जैसे अल्लाह चाहते हैं, अपनी अपनी फहम से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म के एतबार से। तौहीद सबसे बड़ी बुनियाद है इस्लाम की। वक़द ख़ाब मन हमला ज़ुल्मा, और जिसने जुल्म को उठाया होगा वो बड़ा नुकसान उठाएगा। ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما, और जो आदमी अमल करेगा नेक और ईमान उसके पास होगा, ईमान के साथ कोई नेक अमल करेगा तो फिर वो नहीं अंदेशा करेगा किसी किस्म के जुल्म का और ना उसको अंदेशा रहेगा किसी किस्म की कमी का। ऐसा नहीं होगा कि उसने कोई काम किया और उसका बदला उसको नहीं दिया गया, उसमें कमी नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं हुआ कि कोई काम नहीं किया गलती वगैरह का और उसके सर पे थोप दिया गया कि नहीं तूने ये भी किया, तूने ये भी किया, तूने ये भी किया। जुल्म उस पर नहीं होगा और हज़्म उसके साथ में नहीं होगा। हज़्म के माने कमी के आते हैं, ना कमी होगी उसके साथ में ना ज्यादती होगी। जो नेक अमल करेगा और ईमान के साथ करेगा, और इसी वजह से ईमान के साथ अमल किए जाने वाले अमल का नाम ही नेक अमल होता है। फाजमरतबा लोग पूछते हैं कि जो गैर मुस्लिम नेक अमल करते हैं उसका क्या होगा। गैर मुस्लिम के साथ, गैर मुस्लिम का लफ्ज बोलने के बाद में नेक अमल का वर्ड जमता ही नहीं वहां पे। किसी का कोई नेक अमल रहता नहीं, गैर मुस्लिम का कोई नेक अमल नहीं होता। जितने अमल गैर मुस्लिम करते हैं उसमें कोई नेक अमल नहीं है, क्योंकि नेक अमल की शराइत में से पहली शर्त है कि करने वाला मोमिन होना, तो ही वो अमल नेक है। अगर करने वाला मोमिन नहीं है तो वो अमल नेक नहीं होता। दूसरी शर्त उसकी ये होती है कि वो अमल अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म या कम से कम अल्लाह की इजाजत के दायरे में होना, तो वो नेक अमल है। करने वाला मोमिन है लेकिन अपनी मर्जी से उसने कोई हुक्म सजेस्ट कर लिया है, वो नेक अमल नहीं होता। तीसरी शर्त उसमें ये होती है कि वो काम जिसको वो कर रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के दायरे में। ये दो अलग अलग वर्ड होते हैं, एक है बिल्कुल सुन्नत के मुआफिक होना और एक कम अज कम यह है कि खिलाफ सुन्नत नहीं होना। बस काम हुजूर ने नहीं किए लेकिन वो खिलाफ सुन्नत नहीं कहलाते। खिलाफ सुन्नत का एक उसूल है, जाबता है वो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुआफिक होना या कम अज कम तरीके की इजाजत के दायरे में आना, ये तीसरी शर्त है। और चौथी शर्त उसकी यह होती है कि वो काम अल्लाह की रजा के लिए होना। किसी भी अमल के नेक होने का हुक्म लगने के लिए चार शर्तें चाहिए। एक ये कि करने वाला मोमिन होना, दूसरे ये कि वो काम अल्लाह के हुक्म के दायरे में होना, तीसरे ये कि वो काम नबी के तरीके के दायरे में होना, और चौथे ये कि उस काम के करने का मुहर्रिक जो है वो अल्लाह की रजा होना। अगर अल्लाह की रजा के लिए वो नहीं है तो नेक अमल भी बुरा अमल हो जाता है, और अगर अल्लाह की रजा के लिए है लेकिन नबी के तरीके के खिलाफ है तो वो नेक अमल भी बुरा हो जाता है। बिदत उसी को बोलते हैं। बिदत में हो नबी के तरीके की मुखालफत होती है, अमल मेटेरियल बुरा नहीं होता उसका, करने वाला गैर मोमिन नहीं होता। करने वाला गैर मुखलिस होना भी जरूरी नहीं है, इखलास के साथ में भी हो सकता है। वो बिल्कुल नेक नीयति के साथ में कर रहा है अपने भले के लिए, लोगों के भले के लिए, लोगों में जिंदगी आने के लिए, ऐसा करे तो लोग काम में लगे हुए रहते, चलो ऐसा करा दो। नबी के तरीके के खिलाफ वाली बात उस पर साबित आ गई अगर, तो फिर वो नेक अमल नहीं होता, वो तो बिदत है, वो तो गुनाह से भी ज्यादा बुरा गुनाह है। बिदत जो है वो चोरी से भी ज्यादा, शराबखोरी से भी ज्यादा बुरी चीज है। सुअर खाने से ज्यादा बुरी चीज है बिदत करना। सुअर खाना बुरा है, उतना बुरा नहीं जितनी बिदत बुरी है। नबी के तरीके की मुखालफत अगर उस पर अप्लाई हो जाती हो कि नबी के तरीके की मुखालफत के दायरे में है ये, वो बिदत है, वो नेक अमल नहीं होता। फिर मेटेरियल चाहे कितना ही नेक अमल हो, पैसे चाहे कितने ही लगाए उसके ऊपर, मेहनत करने वाला कितनी ही उस पर मेहनत करे, काम करने वाला मोमिन होना, अल्लाह के हुक्म के दायरे में होना, नबी के तरीके के दायरे और सर्कल में होना और अल्लाह की रजा के लिए होना, तो वो उस अमल को नेक बोलते हैं। इन चार चीजों में से एक चीज भी अगर मिस हुई तो वो नेक अमल के दायरे में नहीं आता, फिर वो बदअमली ही है यहाँ से मतलब। इसलिए फरमाया वो अमल मेरे सालिहात ही वो मोमिन। और इसी वजह से चूंकि करने वाला मोमिन होना है तो मोमिन के पास ईमान का नूर जितना होगा और ईमान और मोमिन के पास में मारिफत जितनी होगी उसके एतबार से अमल की कीमत जो है ना वो बढ़ जाती है। ये खास पॉइंट है। करने वाला पहली शर्त यह है कि वो करने वाला मोमिन हो, जिस लेवल का मोमिन होगा उस लेवल का उसका अमल महसूब होगा, हिसाब उसका होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला कितने बड़े ईमान वाले और कितने बड़े मर्तबे वाले हैं, लेकिन उनका कौल यह है कि अगर अबू बकर एक रात का अमल मुझे दे दिए तो मेरी पूरी जिंदगी का अमल मैं उनको दे सकता हूँ। उनके एक रात का अमल वो मुझे दे दें, उसका सवाब मुझे ले लेने दें, मेरी पूरी जिंदगी का वो ले लें, इसके लिए मैं तैयार हूँ, ये बोलते। वो समझते थे कुछ, आखिर वो तो उनके पास में तो जो जहन जो इल्म उनके पास में था बहुत ज़्यादा इल्म था उमर के पास। जब उमर रजी अल्लाह तआला का विसाल हुआ तो हज़रत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि इल्म के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से हज़रत उमर के साथ चले गए, बखिया हमारे में जो कुछ है वो एक है बस। ये हज़रत अली का इरशाद है। वो ये फरमा रहे हैं जिस नौयत की मारिफत आदमी के पास होगी, जिस नौयत का इखलास आदमी के पास होगा, जिस नौयत की हुब्बी नस्बत अल्लाह के साथ ईमान आदमी के पास होगी, जितना कवी ईमान जिसका होगा उसके अमल की क्वालिटी जो है ना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। जोहर की चार रकातें हम लोग भी पढ़ते हैं, जोहर की चार रकातें साहबा भी पढ़ते थे, वही जोहर की चार रकातें अल्लाह के औलिया भी पढ़ते थे। तो हमारे चार रकातों में, अल्लाह के वली के चार रकातों में, अल्लाह के यानी हुजूर के सहाबी के चार रकातों में सब एक ही सवाब में नहीं आएंगे। वो चारेटी हम भी देते, चारेटी अली अल्लाह भी देते थे, चारेटी साहबा भी देते थे, चारेटी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देते थे। तो वो चारेटी चारेटी में है कि कितना कौन कितना दिया, वैसा नहीं है वो मसला। हुजूर ने फरमाया कि मेरा साहबी अगर एक मुट्ठी जौ किसी को सदका करेगा तो बाद वाले ओहद पहाड़ के बराबर सोना दिए तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो वहाँ क्वांटिटी की बात नहीं है, वो क्वालिटी की बात है कि वो चीज़ इतनी कीमती हो जाती है देने वाले के ईमान की कुव्वत के हिसाब से। इसलिए अमल में जो जान आती है असल में वो ईमान और मारिफत के एतबार से आती है। कैसी कितनी मारिफत अल्लाह की इसको है, कितना कितनी कुव्वत इसके ईमान में है, कितना तवक्कुल इसके पास है, कितनी मोहब्बत इसके पास है। क्योंकि जितना कामिल ईमान होगा सिफात ईमान उतने कामिल होंगे, वहाँ इखलास भी वैसी होगा, वहाँ तवक्कुल वैसा होगा, वहाँ सिद्क वैसा होगा, वहाँ खुलूस वैसा होगा, वहाँ मोहब्बत वैसी होगी, वहाँ मारिफत वैसी होगी, वहाँ चाहत वैसी होगी, वहाँ नीयत वैसी, सब चीज़ें उसी एतबार से फिर अल्लाह आती हैं उसके ऊपर। तो ये फरमाया अल्लाह पाक ने कि जो आदमी नेक अमल करेगा और ईमान उसके पास होगा तो फिर वो कमी और ज्यादा किसी किस्म के जुल्म का अंदेशा नहीं रखेगा और ना कोई कमी उसके साथ होगी। वकज़ालिका अनज़लना कुरआन अरबिया, इसी तरह हमने उतारा है कुरान को अरबी ज़ुबान में। वसर्रफ़ना फ़ीही मिनल वईद, और बार बार फेर फेर कर हमने इसमें वईदें सुनाई हैं। लअल्लहुम यत्तकून, ताकि सुनने वाले डर जाएं। क्योंकि ज़रा क़्यामत के मंज़र को बयान किया ना अल्लाह पाक ने, तो सुनने वाला आदमी जो यकीन रखता है अल्लाह की बात पे तो घबराएगा, भाई ये होने वाला है, क्या होगा उस दिन, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमसे तो कुछ हो रहा ही नहीं है, बात देखे तो वाकई उत्ती है। तो उस दिन जब मैदान हशर में सब लोगों को बुला लिया जाएगा, जमा कर लिया जाएगा, तो वहाँ है क्या यहाँ देने के वास्ते, कुछ भी नहीं है। पहले से हाथ उठा देने वाली बात है, वही कुछ भी नहीं है, जो जूते वूते जो भी रेडी, कुछ करे जैसा नहीं है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हम ये बार बार वईदें जो सुना रहे हैं वो डरने के लिए सुना रहे हैं कि डरो, डर के ज़रा सही हो जाओ बस। लअल्लहुम यत्तकून, ताकि ये लोग डर जाएँ सुनने वाले, और युहदिसु लहुम ज़िक्रा, और उनमें नसीहत पैदा हो जाए। नसीहत करना अलग है, नसीहत पैदा होना अलग है। तो नसीहत करते करते नसीहत का असर दिल लेने लगे और मनवा ले अपने अपने आप को और फैसला कर ले कि नहीं भाई वाकई चेंजेस होने जरूरी है, कुछ तब्दीली जरूरी है। छोड़ो ये मनमानी को, छोड़ो मनचाही को, छोड़ो छोड़ो दिल लगियों को और छोड़ो ख्वाहिशात नफ्सानिया को, और कब तक जो है ना ये नफ्स शैतान की गुलामी रहेंगी, इससे निकलो। और कब तक अपने आप को हम गफलत वाली जिंदगी में अपना वक्त गुजारेंगे, इससे दूर बाज आ जाओ। ये टाइम तो इसी तरह पास हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए, तैयारी हमने कुछ नहीं की तो क्या होगा। तो ये बार बार जो चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से सामने आती है वो इसलिए ताकि लोगों में जिक्र पैदा हो जाए, नसीहत पैदा हो जाए और लोगों में डर आ जाए। तआला अल-मलिकुल हक, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है, बहुत बरतर है, बहुत आली है, और वो बादशाह है और वो बरहक है। सही बादशाह वही है, सही हाकिम वही है, सही कंट्रोलर वही है, असली कंट्रोलर वही है, वही उसी की चलती है। टेम्पररी तौर पर लोगों में जो इख्तियार दिए हुए हैं और ढील दी हुई है तो लोगों को गलत फहमी हो गई। अल्लाह फरमाए अल-मलिकुल हक तो वही है, सच्चा बादशाह, सही बादशाह। فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، اور قرآن پاک جب نازل ہو رہا ہو تو وحی مکمل ہونے سے پہلے آپ اس کو پڑھنے کی جلدی مت کیجیے۔ اس سے پہلے بھی ایک دوسری جگہ پر بھی اللہ پاک نے یہ بات فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہی بھول نہ جائیں، اس وجہ سے آپ نازل ہونے کے دوران پچھلی آیتوں کو پڑھتے رہتے تھے، اور جو نازل ہوتا تھا اس کو آپ بولنے جاتے تھے کہ جو نازل ہو رہا اس کو آپ بول لیں تاکہ अच्छा मेमोराइज हो जाए। कहीं कोई फलाने बोलना कि बेफिक्र हो, ये वही उतर रही है, इसको उतरने दो। उतरने के बाद में याद कराना आपका काम नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। आप नहीं भूलेंगे, हम बोल रहे हैं, क्योंकि बुलाना हमारे कब्जे में है, नहीं बुलाना हमारे कब्जे में। हम पढ़वाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। पढ़ाने के बाद इसका मतलब समझाएंगे, हमारी। आपको कुछ करना ही नहीं है, आप खाली बस बैठे रहो, नाजिल हो रहा तो लेते रहो, बस सुनते रहो। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, कुरान पाक को पढ़ने के वास्ते आप उतरते वक्त में अपनी जुबान को हरकत मत दीजिए पढ़ने के लिए। इन अलैना जमअहु व कुरआना, हमारे जिम्मे उसकी हिफाजत है, आपके पास महफूज रखना है और हमारे जिम्मे उसको पढ़वाना है। फैजा कराना हो फतबिउ कुरआना, जब हम उसको पढ़ें तो आप इत्तबा करते रहिए पढ़ने की। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर इसका बयान भी हमारे ही जिम्मे है। तो क्या मतलब है, इसकी क्या मीनिंग है, वो भी चक्कर में मत जाओ, पहले आ जाने दो एक चीज़ को, पहले स्टाल हो जाने दो, उसके बाद में तफसील उसकी आएंगी, खुद ही सामने आते चले जाएंगे। ये अल्लाह ने फरमाया, यहाँ पर भी यही फरमाया, वला ताजल बिल कुरआन मिन क़ब्ल अन युक़्ज़ा इलैका वहयु, और जल्दी मत कीजिए आप कुरान पाक में उसके वही मुकम्मल होने से पहले। ये जुमले भी इस कुरान पाक के अल्लाह का कलाम होने की दलील है। हुजूर अपने ही बारे में कहीं को बोल देंगे ये बात, अगर उनका ही कलाम होता है तो? गैर मुस्लिम बोलते ना कि ये मोहम्मद का कलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई किताब है, उन्होंने अपना बनाया हुआ, तो उन्होंने ही बनाने वाले हैं और उन पर ही तंबी हो रही है कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम उतार रहे हैं, आप जरा आप। ये खुद वही इलाही होने की दलील है कि ये कलाम अल्लाह पाक के पास से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। खुद आपका खुद साख्ता नहीं है, खुद बनाया हुआ नहीं होता, खुद लिखा हुआ, खुद कहा हुआ नहीं होता। वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, और आप ये भी दुआ करते रहिए कि परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने फरमाया कि वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। उलमा ने फरमाया कि इल्म की कोई हद नहीं होती, क्योंकि इल्म अल्लाह की सिफत है, उसकी कोई हद नहीं हो, निहायत नहीं होती उसकी। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह पाक ने यह दुआ सिखाई और ये फरमाया कि यह दुआ करते रहो रब्बी ज़िदनी इल्मा। और हालांकि हुज़ूर ने फरमाया उतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखरीन, मुझे अव्वलीन और आखरीन का इल्म दिया गया। देखने में कुरान पाक इतना है जो हम पढ़ रहे हैं, और हम जब पढ़ते हैं तो समझते हैं ये बात बोली गई शायद। इसके अंदर इतने उलूम होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो उसके मजामीन मुझ पर इतने खुले हुए हैं कि तुम 90 ऊंटों पर उसको लाद नहीं सकते। पता नहीं उसमें ऐसे उलूम रखे, अल्लाह का इल्म होने की वजह से उसमें सब फैलाव है। आदमी को उसकी समझ के एतबार से दिखता रही है इतनी बात बोले शायद, वो उतनी बात ही नहीं है वो। तो जब बुजुर्गों का ये हाल है, और इसी तरह की बात हज़रत अली से भी मनकूल है, हज़रत अली ने भी फरमाई है ये बात। और ये लोग झूठ बोलने वाले, कोई मुबालगा करने वाले, हवा में उड़ाने वाले तो है नहीं, इनको क्या जरूरत पड़ेगी किसी को ऐसी बात बोलने की। वो मारिफत तो होती वैसी है। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अभी हाल के बुजुर्गों में से गुजरे हैं, हाफिजा उनका करामाती था। करामाती हाफिजा का मतलब ये था, उन्होंने फरमाया कि कितनी मोटी किताब हो, एक मरतबा पढ़ने के बाद मैं 16 साल तक उसके पूरे अल्फाज दोहरा सकता हूँ, सिर्फ एक मरतबा पढ़ने के बाद। कितनी मोटी किताब, हजारों किताबें उनको जुबानी याद थी, वो दिमागी को जैसा अल्लाह ने उनको दिया हुआ था, लेकिन हाफिज नहीं थे, हाफिज नहीं हुए आखिर तक। फरमाया कि हाफिज में इसलिए नहीं बन सक रहा हूं कि एक आयत पढ़ा तो इतने मजामीन उसके खुलते हैं कि फिर मुझे नागला याद रहता ना पिछला याद रहता। उसके अंदर जो उलूम है, उसके अंदर जो कमा वो है, वो इतना खुलते हैं वो कि मेरा दिमाग उधर चला जाता है, वो फौरन इतना इतना गलबा हो जाता है उनका कि इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, वो उसके बाद क्या पढ़ना है याद नहीं रहता, वो भूल जाता है। तो पूरी उम्र हाफिज नहीं हो सके, और हाल ये था कि कोई किताब उनसे पढ़वा लो आप एक मरतबा सिर्फ, और 16 साल तक उसके अल्फाज दोहरा सकते थे। और ये कहा कि अगर कोई किताब को मैं 3 मरतबा देख लूँ तो उम्र भर के लिए बेफिक्री, कभी नहीं भूला मैं। बुखारी शरीफ जुबानी याद थी, मुस्लिम शरीफ जुबानी याद थी, तिरमिजी जुबानी याद थी, अबू दाऊद जुबानी याद थी, मुअत्तई जुबानी याद थे, सारी हदीसी किताबें उनको जुबानी याद थी। ऐसा भी नहीं कि मुबालिगे से बोलते थे, बोले खाली नहीं, लोगों को मालूम था कि इनको याद है। जब कोई आदमी आके कोई हदीस पढ़ता था, बोलता था कि बुखारी में फलां जगह पर ये है, तो उसको बोलते हैं कि बोला बुखारी में फलां जगह फलां सफ़े में जो ये अल्फाज तुम पढ़ रहे हैं ये नहीं है, ये है, दसियों मरतबा इसका तजुर्बा हुआ। उनको बोलते थे कि ये नहीं है, ये है वहाँ पे। इसी वजह से उनके सामने कोई आदमी हदीस वगैरह के खिलाफ में बोल ही नहीं सकता था, चलता ही नहीं था कहीं, वो फौरन पकड़ते थे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं इस पर आदम करने लगा कि अल्लाह ताला ने कलाम में अपने कलाम में बड़े मआनी रखे हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वलीन और आखरीन का इल्म दिया गया, कुरान पाक के उलूम आप पर खुले हुए थे, मगर अल्लाह ने फरमाया कि वकुर रब्बी जिदनी इल्म, आप ये फरमाइए कि परवरदिगार मेरे इल्म में आप इजाफा फरमाए। जितने इल्म में इजाफा होता है उतनी मारिफत में इजाफा होता है, जितनी मारिफत में इजाफा होता है उतना कुर्ब इलाही में इजाफा होता है, और दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ईमान की कुव्वत और नूर में इजाफा होता है। अब वो उनके मामले अलग हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम के मामले और अम्बिया में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले, क्योंकि अल्लाह ताला के कुर्ब की तो कोई हद नहीं होती। तो हमारे शुमा को तो हमेशा तालिब इल्मी में ही रहना चाहिए जिंदगी भर के वास्ते। उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहदी, इल्म को हासिल करते रहो बचपन से लेके कब्र में जाने तक, कब्र में जाने तक तालिब इल्म समझते रहो, अपने इल्म को इजाफे की ही कोशिश में रहना, हमेशा उसको ताज़ा करने की कोशिश में रहना। और ताज़ा क्या, अपने को तो हर वक्त नया ही रहता है, पुराना ताज़ा होता है, अपने पास तो इतनी कमी है कि वो नया ही नया, एक बहरे नापायदा किनार है। वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े को शुरू फरमा रहे हैं यहाँ से सूरह तहा में। एक जुमला शुरू में ये फरमा दिया रुकू शुरू होने से पहले, वलक़द अहदना इला आदम मिन क़ब्ल फ़नसिया, हमने आदम से वादा लिया था पहले, आदम भूल गए, फ़नसिया आदम भूल गए, एक वादा हमने उनसे लिया था भूल गए। वलम नजीद लहु अजमा, और जैसे पुख्तगी चाहिए थी वो थी नहीं वहाँ पे, ये पढ़ा वलम नजीद लहु अजमा, हमने नहीं पाया उनमें अजम, यानी वो जो मजबूती वहाँ चाहिए थी जन्नत में जिसके लिए उनको छोड़ा गया था। अब अल्लाह ताला को तो हक है, जो चाहे बोल सकते हैं। अल्लाह ताला ने आदम को फरमाया कि वो मैंने उसको जो, अब हमारे अपने अंदाज में वो जो जुबान का मुहावरा बनता है वो ऐसा ऐसा ही बनता है, वलम नजीद लहु अजमा, असली कुरान शरीफ के जो अल्फाज हैं उसका तर्जुमा बनता है नहीं पाया हमने उनमें अज़्म, वो मजबूती नहीं थी उनके अंदर, नहीं पाई। और आदम में नहीं पाई का मतलब आदमजाद पूरा, ये जो आदमजाद है ना ये बात पे रहता नहीं बोलने की बात है अल्लाह ताला की, ये बोलना चाह रहे हैं कि एक काम में इसको लगाता हूँ जमता नहीं इस पर, अगर जम जाए तो क्या हो इसका, अगर जम जाए तो उसको क्या कुछ मैं नवाजूंगा क्या कुछ मैं दूंगा। तो अब आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को इसके बाद में बयान फरमा रहे हैं, और शुरू इस तरीके से फरमाया है, थोड़ा सा शिकायत वाला लहजा इख्तियार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमारे सबके इल्म में इजाफा फरमाए, और जो चीज़ें इबरत की नसीहत की और आखिरत के यकीन की हैं अल्लाह पाक हमारे दिलों के अंदर भी उनको मुस्तकर फरमा दे, और उसका तासर हमारे दिलों में पैदा फरमा दे, और अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी की बेसबाती को समझ लेने और फिर आखिरत की तैयारी की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह अपने करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए, और इस कुरान हदीस के नूर को हमारे दिलो दिमाग में दाखिल फरमाइए, इसके असरात से अल्लाह पाक हमारे ज़ाहिर व बातिन को मुनव्वर फरमा दीजिए। اللہ قرآن والی جو زندگی ہے اس زندگی پر چلا دیجیے ہم کو، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، وہی ہمارے لیے میسر فرمائیے، وہی ہمارے لیے آسان فرمائیے. اے اللہ اس قرآن پاک سے اعراض کرنے والوں میں ہم کو شامل نہ فرمائیے. اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ قرآن پاک سے اعراض کرنے والوں میں ہمارا نام ہو. اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. ہم اس کی تلاوت کا بھی ارادہ کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کا بھی ارادہ کرتے ہیں، اس کے حقوق ادا کرنے کی رعایت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اے پاک پروردگار آپ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے اور ہمیں اس قرآن پاک کے حقوق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور آپ کی طرف سے اس نازل کردہ علم کو قبول کر لینے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم مبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین.